स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 20 अप्रैल और दिन बुधवार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए न्यूयॉर्क प्राइमरी ट्रंप और हिलेरी के लिए बहुत अहम।
इट फील्स ग्रेट एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट बोथ कैंपेनिंग हियर इन न्यूयॉर्क वोटिंग।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखे के लिए क्या गन्ने की खेती है जिम्मेदार?
शुगर केन को बहुत पानी लग रहा है और हमारे सब वाटर रिसोर्सेज का 70% पानी शुगर केन अकेला ले रहा है, बाकी के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बाकी के क्रॉप्स को पानी नहीं मिल रहा है।
बुंदेलखंड में सूखे की मार झेल रहे लोगों पर एक खास रिपोर्ट, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अजय शर्मा से। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मतदाता राष्ट्रपति चुनाव की प्राइमरी के लिए मतदान कर रहे हैं। न्यूयॉर्क को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल नेताओं के लिए अहम कड़ी माना जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हिलेरी क्लिंटन बर्नी सैंडर्स को पीछे छोड़कर आगे निकल सकती हैं, वहीं रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी टेड क्रूज को आसानी से हरा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 20 साल में पहली बार ड्रग्स के खिलाफ दुनिया भर में रणनीति बनाने पर बैठक कर रही है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों का ध्यान इस बात पर है कि कड़े कानूनों और आपराधिकरण के बजाय ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए उदार नजरिया अपनाया जाए। क्यूबाई क्रांति के नेता फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन के आखिरी दिन अपने भाषण में कम्युनिस्ट विरासत का बचाव किया है। 89 साल के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी लंबी उम्र का हवाला भी दिया। उनके 84 साल के भाई राउल कास्त्रो को अगले 5 साल के लिए देश की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख चुना गया। राउल कास्त्रो ने कहा कि मौजूदा नेताओं वाली ये कांग्रेस आखिरी होगी। कुदरत के कठोर नियमों की वजह से ये 7वीं कांग्रेस इस ऐतिहासिक पीढ़ी के नेतृत्व वाली आखिरी कांग्रेस होगी। मौजूदा नेता अगली पीढ़ी को क्रांति और समाजवाद का झंडा सौंपेंगे। ये थे क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत सरकार ने कहा है कि वो ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। एक दिन पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये हीरा ब्रिटेन को उपहार में दिया गया था। अब संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल का बयान सरकारी पक्ष नहीं है। कोहिनूर हीरा 19वीं सदी में ब्रिटेन गया था और टावर ऑफ लंदन में शाही जवाहरात में रखा हुआ है। बहुत से भारतीय मानते हैं कि ब्रिटानियों ने इस हीरे को चुरा लिया था। ब्राजील की राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने कहा है कि वो अपना पद नहीं छोड़ेंगी। उनके खिलाफ कांग्रेस ने महाअभियोग के लिए वोट दिया है। राजधानी ब्राजीलिया में विदेशी मीडिया के सामने रूसेफ ने कहा कि वो निचले सदन में राजनीतिक विरोधियों की ओर से उन पर किए गए हमलों से दुखी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो भ्रष्ट नहीं है और उनके महाअभियोग का कोई कानूनी आधार नहीं है। रूसेफ पर 2014 के चुनाव में जीत के लिए अवैध तौर पर बजट के आंकड़ों में हेरफेर करने का इल्ज़ाम है। सीरिया में संघर्ष विराम के लिए जेनेवा में चल रही बातचीत को इदलीब में हाल ही में हुए हवाई हमलों से एक और धक्का लगा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक सब्जी बाजार पर सरकारी फौजों और रूस ने हवाई हमले किए और इनमें कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। कंप्यूटर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इंटेल ने ऐलान किया है कि वो दुनिया भर में 12,000 नौकरियों को कम करेगी। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अप्रैल की 20 तारीख और दिन बुधवार। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। न्यूयॉर्क में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरी चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि लोग किसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। इस प्राइमरी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं अजय शर्मा।
रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने मैनहट्टन में अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें अपने लिए मतदान करने के बाद कैसा लगा। बहुत गर्व का एहसास हो रहा है। ये बहुत अहम वक्त है। ये एक सम्मान की बात है और ये सब करने के पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि मैं अमरीका को एक बार फिर महान बनाना चाहता हूँ। बेशक हमारे देश में ढेरों समस्याएं हैं, लेकिन हम अमरीका को फिर महान बनाने जा रहे हैं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डेमोक्रेट्स की ओर से सबसे आगे हिलेरी क्लिंटन ने मतदाताओं को बताया कि वो अपने मुख्य विपक्षी बर्नी सैंडर्स के मुकाबले ओपिनियन पोल में मजबूत स्थिति के बावजूद इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही हैं। मगर कई मतदाताओं का कहना था कि वोट सैंडर्स को ही पड़ेंगे। एक मतदाता माइकल फिंडले ने कहा,
I believe very, very strongly that he's the only politician who has been running for president in the United States.
मुझे पक्का यकीन है कि राष्ट्रपति पद के लिए अकेले वही नेता हैं जो आर्थिक और नैतिक दोनों नजरिए से बेहतर सोच रखते हैं, इसलिए मैं बर्नी सैंडर्स का समर्थक हूँ।
He's more somebody was more believable to the
राजीव शुक्ला के मुताबिक उन पर हमें ज्यादा यकीन है, उनकी चिंताएं वही हैं जो हमारी हैं। मुझे दूसरे उतने विश्वसनीय नहीं लगते। थियोडोरा रे का कहना था, मुझे उनकी ताकत चाहिए, उन जैसी सकारात्मक सोच चाहिए। मैं चाहती हूं कि वो मेरी मदद करें और वो कर सकते हैं। ये थे न्यूयॉर्क प्राइमरी के लिए वोट दे रहे कुछ मतदाताओं के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने रैली करके न्यूयॉर्क के लिए अपने प्रेम का इजहार किया। उनके मुख्य विरोधी टेड क्रूज का पलड़ा उनसे हल्का लग रहा है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हिलेरी क्लिंटन और उनके पति बिल ने चापाका में अपने वोट डाले। क्लिंटन ने बताया कि इस राज्य में चुनाव अभियान करके उन्हें काफी अच्छा लगा।
It feels great and I am so excited about...
मैं न्यूयॉर्क में चुनाव अभियान करके और यहाँ मतदान करके बहुत उत्साहित हूँ। मुझे न्यूयॉर्क से प्यार है। मेरे लिए पिछले दो हफ्तों से इस राज्य में रहना बेहद मजेदार रहा है। ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन। क्लिंटन के समर्थकों ने मतदान केंद्र के बाहर उनके समर्थन में नारे भी लगाए।
और अब सीधे चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, क्या वोटों का डालने का कार्यक्रम खत्म हो गया है?
जी हाँ इकबाल, अब से मुश्किल से 4-5 मिनट पहले मतदान खत्म हुए हैं और ये कह सकता हूँ कि अमरीकी मीडिया और समाचार एजेंसियों के ने एग्जिट पोल्स के आधार पर जो प्रोजेक्शन एक कर दिया है रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के लिए, जो न्यूयॉर्क में वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित कर दिया उन्होंने। मतदानों की गिनती अभी शुरू ही हुई है, लेकिन एग्जिट पोल्स के आधार पर अक्सर यहाँ पर जो अमरीकी मीडिया है वो प्रोजेक्शन कर पाते हैं मतदान खत्म होते ही। वहीं अगर डेमोक्रेट्स में अभी तक किसी तरह का प्रोजेक्शन नहीं किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्लिंटन और सैंडर्स दोनों ही के बीच जो टक्कर है बिल्कुल कांटे की टक्कर है वहां पर, और एग्जिट पोल्स के आधार पर वहां एक मीडिया चैनल का कहना है कि क्लिंटन बहुत कम फासले से लेकिन जीत हासिल कर सकती हैं। एक और चीज जो देखने वाली बात यह है कि हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही जो अपनी जीत की पार्टी होती है आमतौर पर जिस दिन भी प्राइमरी इलेक्शन होता है उस दिन, तो वो न्यूयॉर्क में कर रहे हैं जो ये दिखा रहा है कि दोनों आश्वस्त थे हैं अपनी जीत के प्रति। वहीं जो हिलरी क्लिंटन के खिलाफ खड़े हैं बर्नी सैंडर्स वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली कर रहे हैं। टेड क्रूज जो नंबर 2 पर है प्राइमरी की रेस में वो मेरीलैंड में है, और यहाँ पर लग रहा है कि टेड क्रूज नंबर 3 पर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मतों की गिनती शुरू ही हुई है। एक और खास बात यहाँ ये हो रही है, इस बार न्यूयॉर्क में हर चीज स्टाइल में होता है, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो यहाँ पर टूरिस्ट के लिए पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होता है उसकी जो मीनार है उसको आज अगर हिलरी जीतती है तो गाढ़े नीले रंग में उसका रंग कर दिया जाएगा, अगर सैंडर्स जीतते हैं तो हल्के नीले रंग में, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत अगर होती है तो गाढ़े लाल में किया जाएगा, और दूसरे अगर करते हैं तो लाइट रेड में उसको रंगा जाएगा। तो वो अपने आप में एक रोचक चीज जो न्यूयॉर्क की खासियत होती है कुछ अलग अंदाज में कुछ चीजें करने की, वो नजर आ रहा है।
तो ब्रजेश, क्या हिलेरी क्लिंटन को न्यूयॉर्क के सीनेटर रह चुके होने का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है?
देखिए यही लग रहा था कि अब तक तो कि वो दो दो बार यहाँ सेनेटर रह चुकी हैं और अभी तक जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण थे उसके अनुसार वो कम से कम 15-16% के अंतर से आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल्स के आधार से के हिसाब से एक मीडिया चैनल का आ रहा है कि बहुत कम फासला है। इसका मतलब बर्नी सैंडर्स ने जो पिछले दिनों में यहाँ पर काफी मेहनत की है, और एक और बात यहाँ पर बताने की जरूरत है कि बर्नी सैंडर्स भी न्यूयॉर्कर कहते हैं अपने को, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए थे, 18 साल तक यहीं रहे थे, उसके बाद वो वर्मोंट चले गए और वहां के सेनेटर हैं वो तो। और हिलरी क्लिंटन का नेटवर्क बहुत मजबूत है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर इतने कम फासले से वो जीत पाई हैं तो इसको बर्नी सैंडर्स एक तरह से अपनी मोरल विक्ट्री की तरह पेश करने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस ताजा जानकारी के लिए।
एक तरफ आईपीएल मैचों के लिए पानी से तरबतर मैदान, दूसरी तरफ पानी के लिए तरसते गांव देहात।
कहाँ आवत है पानी, मरती है गोरु बचेरु मराई सबको भैया हरा कहे का।
सूखी जमीन, पथराई आंखों में बच्चों के बिखरते सपने।
हमारे सबसे बच्चे जाते होंगे स्कूल, बहुत कम जाते हैं और ज्यादा पानी में, और अब घर के काम दिख रहे हैं क्योंकि नहीं माप चलेगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ कुछ खाने के लिए है नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही है मदद।
पानी नहीं बचा, बचे रहे तजुर्बे।
पहले जो है तो लोग पानी का रख रखाव करते थे, बंधियां डालते थे, अब आज बरसाती पानी कोई रोक नहीं पा रहा
और अब चारों तरफ सूखा ही सूखा।
आसों की साल में कई आदमी ने बलकट के लाने खेती लई, अब भाव ना कुछ तो सवेरे से चिल्लाता कही कि हम तो आत्महत्या कर ले।
सूखा भारत सोमवार 18 अप्रैल से शाम 7:30 बजे दिन भर में, पुनः प्रसारण अगली सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। सूखा भारत,
तो सूखा भारत बीबीसी हिंदी की विशेष पेशकश। और इसी सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। विश्लेषकों का मानना है कि मराठवाड़ा के 8 जिलों में सूखे की स्थिति इतनी भयानक है कि ये इलाका महाराष्ट्र का पहला मरुभूमि बनने की राह पर है, और इसका कारण है मराठवाड़ा में गन्ने की खेती। समस्या का हल इसलिए आसान नहीं क्योंकि राज्य में हर साल पैदा होने वाला लाखों टन गन्ना जिन चीनी मिलों में जाता है उनमें से कई चीनी मिलों के मालिक महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। सुनिए दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
आपके घरों को पहुंचने वाली चीनी जिस गन्ने से बनती है उसकी खेती को महाराष्ट्र में सूखे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। महाराष्ट्र की 5% कृषि जमीन पर उगने वाला गन्ना राज्य का 70% पानी पी जाता है। राज्य के मात्र 6% किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं। मराठवाड़ा में पानी की कमी का नतीजा ये है कि लोग मराठवाड़ा छोड़कर जीवन बचाने दूसरे इलाकों में भाग रहे हैं, लेकिन पानी की कमी के बावजूद लोग गन्ने की खेती क्यों करते हैं? किसान नेता और महाराष्ट्र के एक स्थानीय दल स्वाभिमानी पक्ष के सांसद राजू शेट्टी बताते हैं।
पॉलिटिशियंस के कब्जे में ये सब शुगर मिले हैं। सरकार की नीतियां ये रहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि आज राजनीति के लिए जो कि पैसों की आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा पैसा इस शुगर इंडस्ट्री से ये लोग पैदा करते हैं। इंडस्ट्री तभी चलेगी अगर उसमें कुछ किसानों को फायदा हो जाएगा। जो पानी ज्यादा लगता है गन्ने को वो पानी सप्लाई करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए जो बिजली की आवश्यकता है वो बिजली सरकार सब्सिडी में देती है। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं लोग, उसको सब्सिडी मिलती है।
जल विशेषज्ञ और जल संसाधन से जुड़े कई सरकारी वरिष्ठ पदों पर रहे माधव चितले ने 1999 में एक रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को अकाल से निपटने के लिए कई सुझाव दिए थे। अपने सुझावों में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के जिन इलाकों में पानी की उपलब्धता अलग अलग है उस आधार पर पानी का प्रबंधन किया जाना चाहिए। अपनी रिपोर्ट में चितले ने सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र का 1/3 इलाका ऐसा है जहाँ गन्ना नहीं उगाया जाना चाहिए और गन्ने की जगह मौसमी फसलों को उगाया जाना चाहिए। चितले कहते हैं कि आज तक उनके सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उनके शब्दों में गन्ने वाले लोग राजनीति में बहुत हैं।
गन्ने वाले लोग हैं, उसका दबाव बहुत है राजनीति पर, और इस कारण से ये सुझाव तो तात्विक दृष्टि से लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में उस प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है।
लेकिन ये बात भी साफ है कि पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र सरकार पर भारी दबाव है, लोग नाराज हैं और सरकार कुछ करते हुए दिखना चाहती है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के अनुसार सरकार के भीतर चर्चा चल रही है कि मराठवाड़ा में अगले 5 सालों तक कोई चीनी की मिल न लगाई जाए और जिन चीनी मिलों को अनुमति मिल चुकी है, उनके लिए ड्रिप सिंचाई को अनिवार्य बना दिया जाए।
ये सभी विचार करके कि अभी आगे चल के कम से कम 5 साल तक नई शुगर फैक्ट्री को परमिशन ना दिया जाए।
तो ये अभी कैबिनेट की सोच है सर, मीटिंग में ये मतलब फैसला कब लागू कब होगा?
नहीं, कैबिनेट में नहीं आया, अभी हमारी सोच चल रही है। अभी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, 5 साल तक पानी के तहत बढ़ाना है, मतलब पानी ऊपर आएगा तब तक कम से कम 5 साल ये नहीं देना चाहिए। और जो दिए हुए शुगर फैक्ट्री को परमिशन, मतलब शुगर मिल को, उनको जो ड्रिप का है वो कंपलसरी करना।
विश्लेषक कहते हैं कि धीरे धीरे चीनी मिलों की संख्या को कम किया जाए, ड्रिप सिंचाई की ओर रुख किया जाए, बाकी की फसलों को भी प्रोत्साहन दिया जाए, यानी दूसरी फसलों के प्रति सरकारी नीतियों में बदलाव हो। राजू शेट्टी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पैरों पर खड़ा करने की बात करते हैं। उधर माधव चितले कहते हैं कि जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां गन्ने की खेती पर प्रतिबंध होना चाहिए। वो कहते हैं कि जिन इलाकों में पीने का पानी नहीं है वहां खेती का सवाल ही कहां उठता है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
तो क्या गन्ने की खेती मराठवाड़ा में पानी की समस्या की जड़ है? क्या और भी कई पहलू हैं गन्ने की खेती से जुड़े? इसी बात पर बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने जल विशेषज्ञ प्रदीप पुरंदरे से बात की। विनीत खरे ने पूछा कि सूखे की स्थिति के लिए गन्ने की खेती किस हद तक जिम्मेदार है।
2012 में जब सूखा चालू था, सूखा चालू होते समय मराठवाड़ा में 20 शुगर फैक्ट्रीज को परमिशन दिया गया। 5% शुगर के एरिया 70% पानी ले रहा है वो।
शुगर मिल्स क्यों, मतलब और कोई इंडस्ट्री क्यों?
क्या होता है, शुगर मिल्स के लिए उनको गवर्नमेंट से कैपिटल मिलता है, 95% कैपिटल गवर्नमेंट देती है। बस एक बार सैंक्शन लिया तो पैसा गवर्नमेंट का है और बेनिफिट इनको खुद का है। और उसको FRP है, उसको मिनिमम प्राइस मिलता है, उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसको सब गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट और ये सब उसको है, बाकी के क्रॉप्स तो नहीं है ये। और देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी।
अगर ऐसी स्थिति है कि गन्ने के कारण ही सूखे की ऐसी स्थिति आ रही है, तो फिर इसको, ये जो लॉबी है, ये इसको सर्कल को तोड़ा कैसे जाए, फिर आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?
कैसा है, सिर्फ शुगर केन की बात नहीं है ये फ्यूडलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म का अलायंस है और उसकी वजह से डिसीजंस हो रहे हैं और इनको हटाना चाहिए, ये पॉलिसीज बदलनी चाहिए गवर्नमेंट की। बाकी के क्रॉप्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, उनको प्रोक्योरमेंट होना चाहिए उनका, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है शुगर फैक्ट्रीज को वो कम होना चाहिए, तो अपने आप सब कम हो जाएगा।
जो कि आपको होता दिख रहा है,
अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन पब्लिक डिमांड, पब्लिक एंगर वैसा है, ऐसा होने की होना चाहिए जरूर। अभी
एक में कहीं ये गिरीश कुबेर का आज पीस आपने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो मराठवाड़ा का जो एरिया है, इलाका है, वो महाराष्ट्र का पहला डिजर्ट हो जाएगा।
100% एग्री विद हिम।
ये आपको लगता है नहीं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ये सही है?
नहीं, ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, यही होने वाला है। इट इज नॉट ओवर सिंप्लीफिकेशन। शुगर केन को बहुत पानी लग रहा है और हमारे सब वाटर रिसोर्सेज का 70% पानी शुगर केन अकेला ले रहा है, बाकी के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बाकी के क्रॉप्स को पानी नहीं मिल रहा है। मराठवाड़ा में जो जहाँ पानी कम है वहां से पानी बाहर जा रहा है, बाहर यानी जब हम शुगर बनाते हैं मराठवाड़ा में, 1 किलो शुगर के लिए 2500 लीटर पानी लगता है। तो जब हम शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्चुअल वाटर की तरफ से। तो एक तरफ पानी नहीं है और जो पानी है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन ही होगा डेफिनेटली।
तो आपको नहीं लगता एक और बात होती है कि अगर हम शुगर मिल्स को सरकार का जो सरकारी मदद ना दें तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है वो शुगर पर बहुत डिपेंडेंट है, उस पर असर पड़ सकता है?
देखने का तरीका है, एक समय ऐसा भी था कि बॉम्बे में कपड़ा मिल के ऊपर डिपेंडेंट थी इकोनॉमी, वो कपड़ा मिल का इंडस्ट्री जो था वो सब खलास हो गया, उसके लिए कोई रुका था क्या, कोई बोला था क्या ऐसा कुछ? तो ये तो स्थित्यंतर होने वाले ही है, होना चाहिए ये। और हम कहाँ बोल रहे कि कल से बंद करो, ग्रेजुअली बंद करो उसको, इन द मीनवाइल उसको ड्रिप के ऊपर ले जाओ, एरिया कम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और उनका प्रोत्साहन बंद करो, एनकरेजमेंट बंद करो, बाकी के लोगों, बाकी के क्रॉप्स को रेमुनरेटिव प्राइसेस देना शुरू करो।
ये थे जल विशेषज्ञ प्रदीप पुरंदरे। और अब बीबीसी हिंदी की विशेष प्रस्तुति सूखा भारत। यूं तो पूरा बुंदेलखंड ही सूखे की वजह से पानी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ जगह या संकट कुछ ज़्यादा ही है। इनमें से एक है झांसी ज़िले का बोडा गांव। पानी का जो संकट पूरे बुंदेलखंड में है वो तो है ही, हैंडपंपों से निकलने वाला पानी इतना खारा है कि मुश्किल से ही कोई पी सकता है। हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र आजकल बुंदेलखंड के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां के लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
दिन के 12 बज गए हैं और कड़ी धूप है यहाँ पे इस समय। जो झांसी ज़िले में बोड़ा गांव है और यहाँ पे एक बाबा जी मुझे दिख रहे हैं जिनके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी है, डिब्बा है और सामान अपना लिए हुए। कहाँ से आ रहे हैं बाबा जी आप?
हमारा साहब कुगाफे से आ रहे हैं, गंज के किनारे हैं जी। हम नहाने गए थे साहब, यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है तो वहीं से नहा के अपने सीधे अब खाना खाने के लिए आए।
झांसी जिले का बोड़ा गांव पूरे बुंदेलखंड में शायद सबसे ज्यादा पानी का संकट झेल रहा है। वैसे ये तो एक बानगी भर है, ये स्थिति पूरे बुंदेलखंड में जगह जगह दिख जाएगी। कोई साइकिल पर 8-10 डिब्बे टांगे हुए हैं तो कुछ महिलाएं सिर पर 3-4 घड़े रखे हुए हैं, या फिर कुछ लोग बैलगाड़ी पर भी पानी से भरे बड़े बड़े ड्रम लादे हुए दिख जाएंगे।
साइकिलों से जाते हैं, डिब्बों से भर के लाते हैं, जैसे ये टंगा है। सारे गांव का लोग जाता है वहां पर इकट्ठा।
सारी औरतें 2 बजे रास्ते भरती हैं और गांव में कहीं भी पानी है नहीं, गांव के बाहर पानी है और सभी लोग वहीं जाते हैं। कम से कम 5-5 घंटे पानी आता है, 4 डिब्बा नंबर लग के पानी मिलता है यहाँ पे।
बोड़ा गाँव के भीतर ही ये एक हैंडपम्प है जिससे पानी निकालने के लिए कुछ महिलाएं संघर्ष कर रही है।
एक बार धार टूटने के बाद फिर ये कितनी देर बाद पानी आता है?
अब जो नहीं हमने चलाओ से इतनी धार में आओ पानी।
ये इतने घड़े कितनी देर में भरेंगे आपके?
इतनी बासरन में तो दिन भर लग जाए ना, भरत भरत कम निकलत ना उसमें पानी।
तो जब दिन भर पानी भरती तो और काम कौन करता?
तो अब रख गए बासन, फिर चले गए, फिर भरन लगे अपने जब आ गए नंबर।
जानवरों के लिए भी इसी पानी से?
जानवर के लिए तो नदी को आ जाते हैं, मगर पीने के लिए तो यही है और खर्चा के लिए यही है पानी।
और नहाने धोने का
सब यही में ले जाते हैं, नहावे भी नदी जाते हैं।
हैंडपंप के किनारे अपनी बारी का इंतजार कर रही कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं। जिज्ञासा हुई कि जब इतना समय पानी लाने में निकालते होंगे तो पढ़ते कब होंगे?
पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं, रात को क्या करें, काम भी तो करना पड़ता है। पानी भर गया समझो कि सब कुछ हो गया।
सबसे ज्यादा पानी की समस्या पड़ने के समय पे हम लोग पानी ढोने जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर से हम पानी साइकिल में लाते हैं। बहनें हमारी माताएं बहनें हैं तो खोपड़ी में पानी लाती हैं सिर पर रख करके।
ये बताइए जब यहाँ स्कूल कितने हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते
हैं? स्कूल सब 3 है स्कूल, वहाँ पे तीनों स्कूलों में पढ़ाई होती है, पानी एक भी स्कूल में नहीं है।
कैसे पढ़ते इतनी देर, 5-6 घंटे बच्चे कैसे?
5-6 घंटे साहब हम लोग साहब वहाँ से पानी भरवा देते हैं, प्रधान वगैरह तो टैंकर से पानी टंकियों में भर लेते हैं तो बच्चों को दे पाते हैं मुश्किल में।
ये जो बच्चे साइकिल से पानी भरने जा रहे हैं ये फिर स्कूल कब जाते हैं?
वो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, उनका टाइम ही मतलब टाइम जो है खत्म हो जाता है उनका।
हाँ हाँ, तो सर ये कि जो बच्चे हैं इनके माँ बाप सब जगह दिल्ली, यहाँ पे कोई है नहीं, अब वो बेचारे पूरे दिन भरते हैं पानी, मतलब अब स्कूल जाना भी उनका बंद हो गया पानी की वजह से। अब
स्कूलों में क्या हालत है पानी की? स्कूल में जो
किसी भी स्कूल में पानी नहीं है और बच्चे अपने घर से एक ले लेके आते हैं बोतल।
प्रधान जी यहाँ स्कूल है कोई जहाँ मिड डे मील बनता है?
हाँ हाँ बनता है।
तो जो मिड डे मील किस पानी से बनता है? बच्चे पानी, खाने के बाद पानी कहाँ से पाते हैं?
वहाँ से जो हमारे रसोईया है वो भर के लाती है, वो बच्चों को पानी पिलाते हैं स्कूल में, मिड डे मील भी बनता है।
बोड़ा गांव के प्रधान बाबूलाल कुशवाहा बताते हैं कि 7,000 की आबादी वाले इस गांव में 5 तालाब हैं, लेकिन सब सूखे पड़े हैं।
हमारे गाँव में 5 तालाब है, 5 तालाब सूखे पड़े। हैंडपम्प है लगभग 25 है, तो जा मेरे से 2 चल रहे हैं गाँव में और 2 हमने अभी नए लगवाए, वे भी चल रही है और बाकी सब सूखे पड़े।
मीडिया में बुंदेलखंड के जल संकट की चर्चा आम है, जाहिर है प्रशासन के कानों में भी ये समस्या है। सूखे के संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज तो जारी किए गए और लोगों तक पहुंचाने का दावा भी किया गया, लेकिन लगता है कि जल संकट को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर बताते हैं।
एक बुंदेलखंडी बोलता है कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए, मतलब पति मर जाए और पानी ना मरे। तो जब ये चीज़ हो जाए बुंदेलखंड में तो समझना चाहिए कि पानी की कितनी ज़रूरत है। केन सूख चुकी है, मंदाकिनी सूख चुकी है, खेतों में वीरानी है और इस सब के गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, सरकार नहीं है।
बुंदेलखंड खासकर बांदा चित्रकूट इलाके की पानी की समस्या जग जाहिर है। इस इलाके में 70 के दशक में उस समय की एशिया की सबसे बड़ी जल परियोजना पाठा पेयजल परियोजना नाम से शुरू की गई थी, जिसमें पाइपलाइन के जरिए मानिकपुर तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। जानकार बताते हैं कि इससे दूर दराज तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया गया, लेकिन बाद में बदइंतजामी के चलते इसका जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। उधर महोबा जिले के कपसा गांव के लोग पानी की दोहरी मार सह रहे हैं। पानी का जो संकट पूरे बुंदेलखंड में है वो तो यहाँ है ही। हैंडपंपों से निकलने वाला पानी इतना खारा है कि मुश्किल से ही कोई पी सकता है।
मीठा यहाँ नहीं है, खारा है, सब नलन का खारा। अच्छा। कहूँ इसे आओ थे कदार पहाड़ी से जितना एक कसाणी आधी कसाणी जितना लाई पाए
कहाँ आवत है पानी है, मरती है गोरू बचेरू मराई सबको भैया हरा कहे का गाँव का वहाँ से लाओ थे कदार पहाड़िया वहाँ से ढो ढो मुड़न माँ।
गाँव वालों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें यही पानी पीना पड़ता है। जहाँ तक पशुओं की बात है तो लोगों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि पशुपालन तो लोगों ने जैसे बंद ही कर दिया है क्योंकि पशु ज़्यादातर दूध के लिए पाले जाते हैं और इस समय उन्हें दूध की नहीं पानी की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो ये थे समीर आत्मज मिश्र और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चला है और अजय अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी बताया जाए।
जी इस समय की जो बड़ी बड़ी खबरें दिख रही हैं मुझे पहले पन्ने पर वो ईपीएफ के मुद्दे पर सरकार की अधिसूचना को रद्द करने वाली खबर है जिसमें जनसत्ता लिखता है कि जो कर्मचारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने अपनी अधिसूचना जो है मंगलवार को रद्द कर दी है। इससे पहले उसने उसको स्थगित किया था जुलाई तक के लिए।
जी।
दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है हिंदुस्तान में है कि पार्टियों की आय जो है 40% बढ़ी है
अलग राजनीतिक पार्टियों
जी राजनीतिक पार्टियों की जिसमें कि जो आम हिंदुस्तानी की आय जहाँ पर सिर्फ 5% बढ़ी है जब उसके मुकाबले जो है पार्टियों की आय 40% तक उसमें बढ़ोतरी हुई है। अमर उजाला अखबार जो है उसमें एक अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका एक इंटरव्यू छपा है उसमें उन्होंने कहा है कि तीसरा मोर्चा की जो बात नीतीश कुमार कर रहे हैं वो सिर्फ मुलायम सिंह की अगुवाई में ही पॉसिबल है और ये जो है
अखिलेश का कहना है।
हाँ नीतीश जो है उनको वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। तीसरे चरण के जो बंगाल में तीसरे चरण के लिए आज जो है मतदान है और उसमें 62 सीटों पर मतदान होना है और गुरुवार को जो है ये कोलकाता की 7 मुर्शिदाबाद की 22 बर्धमान की 16 और नदिया की 17 सीटों पर मतदान किया जाएगा। जी
जी बहुत शुक्रिया अजय आपका अखबारों की समीक्षा के लिए और अब बात देखते हैं कि किन खबरों पर रहेगी आज सबकी नज़र।
भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि आज बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं। इस बैठक में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का मुद्दा उठने की संभावना है। 2 दिन तक चलने वाली इस बातचीत में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भाग ले रहे हैं। इस मुलाकात में दोनों देशों की सीमाओं को लेकर और दूसरे रणनीतिक मुद्दे भी उठाए जाएंगे। पिछले हफ्ते चीन ने अजहर को आतंकवादी घोषित करने की भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र में आपत्ति जताई थी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे आज एक तरफा यातायात के लिए खोला जा सकता है। हर साल सर्दियों में बर्फबारी के कारण इस हाईवे को बंद कर दिया जाता है। अभी तक इस साल इस सड़क से 4 बार बर्फ हटाई जा चुकी है। कुछ इलाकों में बर्फ 80 फीट तक ऊंची थी। नेटो के प्रतिनिधि आज रूस के साथ औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक का मकसद यूक्रेन संकट, सैन्य खतरा कम करने और अफगानिस्तान जैसे मामलों पर चर्चा करना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज दूसरी ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में होने वाली इस प्रदर्शनी को वाणिज्य मंत्रालय, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और CII मिलकर कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का मकसद भारत और दुनिया के बीच सेवा कारोबार के अवसर बढ़ाना है। आज से दिल्ली में सिविल सर्विसेज डे का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन के इस कार्यक्रम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासनिक अधिकारियों को जनसेवा के लिए पुरस्कृत करेंगे। देश भर में आज जैन धर्म के संत महावीर की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर जैन मंदिरों में पूजा के अलावा कुछ जगह रथ यात्राएं भी निकाली जाएंगी।
और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में राष्ट्रपति चुनाव की प्राइमरी के मतदान में रिपब्लिकन पार्टी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 20 साल में पहली बार ड्रग्स के खिलाफ दुनिया भर में रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रही है। क्यूबाई क्रांति के नेता फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो को अगले 5 साल के लिए देश की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख चुना गया है। भारत सरकार ने कहा है कि वो ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ब्राज़ील की राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने कहा है कि वो अपना पद नहीं छोड़ेंगी। उनके खिलाफ कांग्रेस ने महाअभियोग के लिए वोट दिया है। सीरिया में संघर्ष विराम के लिए जेनेवा में चल रही बातचीत को इदलीब के हवाई हमलों से एक और गहरा धक्का लगा है। कंप्यूटर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इंटेल ने ऐलान किया है कि वो दुनिया भर में 12,000 नौकरियों को कम करेगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद, यानी 8 बजे, कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।